Om Namah Shivaya. Dear listeners of Shaivam.org, the next program is Spiritual Discourse. In this, you are about to listen Dakshinamurti Stotram, presented by Swami Sri Atmananda Giriji Maharaj. Thank you. Om Namah Shivaya.
तो बोले चमार कैसे हो गए? बोले इनकी दृष्टि केवल चमड़ी पर है, हाड़ मांस के इस शरीर है, इस पर इनकी दृष्टि है, तत्व दृष्टि तो इनके है ही नहीं है। मैं इस टेढ़े मेढ़े शरीर के अंदर मैं सीधा हूं, ये तो उनको देखी दिखाई नहीं पड़ रहा है। पाइप टेढ़ा मेढ़ा होता है, पाइप के अंदर का जो स्पेस है, पाइप आकाश, तुमने देखा है पाइप का आकाश है? घटाकाश तो देखा है, पाइप आकाश देखा है? जो घटाकाश है वही पाइप आकाश है। अरे भाई पाइप टेढ़ा मेढ़ा हो सकता है, पाइप आकाश टेढ़ा मेढ़ा नहीं होता। घट टेढ़ा मेढ़ा हो सकता है, घटाकाश टेढ़ा मेढ़ा नहीं होता। शरीर टेढ़ा मेढ़ा हो सकता है, शरीर ही टेढ़ा मेढ़ा नहीं हो सकता। तो इन लोगों की दृष्टि तो केवल शरीर में है, शरीर माने हाड़ मांस है, और हाड़ मांस का मतलब चमड़ी है, चमड़ी में जिसकी दृष्टि होती है वो तो चमार होता है ना? आप लोग कभी कभी बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन में, चर्च गेट, ग्रांड रोड उतरते हो ना, है वहां जूता में पॉलिश करने वाले बैठते हैं कि नहीं लाइन लगाकर? आप जब ट्रेन से उतर के जाते हो या ट्रेन चढ़ने के लिए आते हो या बस से उतरते निकलते हो या बस चढ़ने के लिए आते हो, वे लोग हाथ में ब्रश लेकर वो ठक ठक करते हुए आपके पांव को देखते हो, आपके शक्ल को नहीं देखते। देखते आपके अनुहार को, चेहरे को देखते वो लोग है, काला है कि गोरा है, ये आपके चेहरे के काले गोरेपना को नहीं देखते। लेकिन आपके जो जूता है वो काला है कि ब्राउन है कि लाल है कि गंदा है कि साफ चमक रहा है कि, और मुझे लगता है सबसे बड़े ज्यादा दुखी किस समय होते हैं पता है? जब ठीक उसके सामने आप खड़े हो और आपका जूता बहुत चमकता हो, बड़े दुखी होंगे वो। पहले से चमका हुआ है, उनका काम ही नहीं है। और यदि आप उसके सामने खड़े हो और जूता गंदा हो तो उनको कहने का मौका मिल जाता है, साहेब पॉलिश कर लो। और उसके बाद फिर आप ना कर दो तो फिर दुखी हो जाएंगे, यस हां करके पांव आगे बढ़ा तो क्या प्रसन्न है, आज भगवान ने बड़ी कृपा की है। तो ये खाली उसकी दृष्टि, कभी जूता पहनने वाला व्यक्ति का चेहरा कैसा है, उसके औकात कैसी है वो नहीं देखते हैं, जूता कैसा है। तो जूता तो चमड़ी है, चमड़ी की क्वालिटी उनको पता है, व्यक्ति की क्वालिटी को उनको कुछ लेना देना नहीं है। अष्टावक्र ने यही परिभाषा करके बता दिया कि ये सब के सब चमड़ी देखने वाले हैं, चमार हैं, और तुम इन चमारों से अपने तत्व का निर्णय करना चाह रहे हो। अब सुन लो तुम्हारे तुम्हारे प्रश्न क्या है, बोलो तुम्हारा प्रश्न क्या है? सब सन्न, सभासद एकदम सन्न हो गए। राजा जनक ने हिम्मत करके कहा, ये तो बड़ा खतरनाक सन्यासी आ गया, बड़ा हिम्मत करके आया, महाराज मेरा प्रश्न वही है, वो सही है कि ये सही है? अष्टावक्र ने बिना विचारे एक ही शब्द से कह दिया कि दोनों गलत है, फड़ से कह दिया दोनों गलत है। वो सही है कि ये सही है का क्या मतलब होता है, दोनों गलत है? आप भी कह सकते हो, कोई तुमसे पूछे वो सही है कि ये सही है, आप भी कह सकते हो दोनों गलत है या दोनों सही है। यदि तुम ये कहने लग जाओगे कि ये सही है वो गलत है, वो सही है ये गलत है, तो तुम मूर्ख बन गए। या तो ये कहो कि दोनों गलत है तो तुम जीत जाओगे, या यूं कहो कि दोनों सही है तो तुम जीत जाओगे। बात समझ गए? नहीं, तत्त्वमसि महावाक्य यही कहता है, दोनों गलत है ये भी कहता है और दोनों सही है ये भी कहता है, देख लो। वही तो यहां आ गया मूल श्लोक में, भगवान शंकराचार्य जी कह रहे हैं, दक्षिणामूर्ति भगवान शिव यही वाक्य के द्वारा संसार का निरूपण करते हैं, दोनों सही है या दोनों गलत है। अष्टावक्र जी ने तो कह दिया दोनों गलत है। सो कैसे दोनों गलत कैसे? क्योंकि वो तो वेदांती थे, अद्वैत वेदांती थे। क्योंकि एक सत्ता को मानने वाले होने के कारण दो सत्ता के बारे में विकल्प जो पूछ रहा है, तो विकल्प जहां होगा वो दोनों गलत होंगे। इसके अपेक्षा वो है, उसके अपेक्षा यह है, दोनों ही गलत होते हैं। क्योंकि इसको सिद्ध करना चाहो वो गलत करना पड़ेगा, और उसको गलत सिद्ध करना चाहो तो इसको गलत, उसको सही सिद्ध करना चाहो इसको गलत, तो उसको सही करने के लिए इसको गलत, इसको सही करने के लिए उसको गलत, दोनों ही को गलत या दोनों सही। दोनों गलत कैसे हैं? तो यही है तत्त्वमसि। तत् और तुम, इनमें से दोनों सही हैं कि दोनों गलत हैं? बोलो, आप बताओ। कई बार वेदांत सुने हो, तुम्हारे सामने जनक का प्रश्न आ गया है। तत् और तुम, ये दो वाक्य हैं। तत् सही है कि तुम सही है? हैं? या तत् गलत है कि तुम गलत है? बोलो, दोनों सही तो नहीं हो सकता है। या दोनों गलत होंगे या दोनों सही होंगे? तत् सही है कि तुम सही है? दो सही नहीं हो सकते, सही तो एक ही होगा। बोलो, दोनों सही होंगे? हैं? दोनों सही नहीं हो सकते, सही होने के लिए दोनों एक होना पड़ेगा, तभी जाकर सही होगा। दो सही हो गया तो द्वैत आ गए, कहां से इस वाक्य का अर्थ ही नहीं लगेगा। तब तुम्हें इस वाक्य का शोधन करना पड़ेगा, तत् पद का वाच्यार्थ क्या है और तुम पद का वाच्यार्थ क्या है, ये दोनों का अर्थ तुमको समझना पड़ेगा। तत् पद का वाच्यार्थ है सर्वज्ञ ईश्वर, सर्वशक्तिमान ईश्वर, तत् पद का वाच्यार्थ। और तुम पद का वाच्यार्थ अल्पज्ञ जीव, अल्पशक्तिमान जीव, ये सारी व्यक्ति। और क्योंकि अल्पज्ञ सर्वज्ञ नहीं हो सकता, सर्वज्ञ अल्पज्ञ नहीं हो सकता है, सर्वज्ञ और अल्पज्ञ के बीच में एकता नहीं हो सकता, इसलिए दोनों सही नहीं होंगे। दोनों एक साथ सही होंगे? दोनों एक साथ सही होंगे तब तो तुम्हारा वेदांत सिद्धांत ही खत्म हो गया। हा, तुम्हारा वेदांत बिल्कुल खत्म हो गया। हम ये पूछ रहे हैं कि ये सही है कि ये सही है? है? दोनों सही मानते हो तो दो सही है, एक सही है दूसरा सही है, दो सही है तो तुम्हारा वेदांत का क्या कहना है? वेदांत तो ये कहता है कि एक सही है। अब एक सही है तो ये सही है कि ये सही है? बोलो, है? दोनों अलग अलग सही नहीं है, बात समझ गए कि नहीं? दोनों अलग अलग सही नहीं हो सकते, दो सही नहीं हो सकते, क्योंकि जगत में दो सत नहीं हो सकते, बात समझ गए कि नहीं? सत तो एक ही है, यही तो बताते आ रहे हैं। यदि दोनों सही है का मतलब तो दो सत है, तो क्या आत्मा दो है? ये कहना चाह रहे हैं ये वाक्य, तत्त्वमसि महावाक्य, दो आत्मा दोनों सही है ये कहना चाह रहा है? नहीं। फिर दोनों गलत है? तो बोले दोनों गलत भी नहीं है, तो इसमें कुछ गलत है कुछ सही है। अब ये विचार करना है कि गलत अंश क्या है और सही अंश क्या है। सर्वज्ञ में से सर्व, अल्पज्ञ में से अल्प, ये दो अलग अलग है, क्योंकि सर्व और अल्प की एकता नहीं हो सकती, अल्प और सर्व की एकता नहीं हो सकती है। और सर्व में से सर्व हटा दो, सर्वज्ञ में से सर्व हटा दो, ज्ञ रहने दो, अल्पज्ञ में से अल्प हटा दो, ज्ञ रहने दो। अब ज्ञ के बारे में पूछा जाए तो ज्ञ ज्ञ दोनों एक हैं कि अलग हैं? तो ज्ञ ज्ञ तो एक है, इसलिए या तो दोनों गलत हैं, नाम और रूप में दोनों गलत हैं, अस्थिभाति प्रिय में दोनों सही है। दोनों सही माने दो सही नहीं, क्योंकि जो अस्थिभाति प्रियता इसमें है वही अस्थिभाति प्रियता उसमें है, जो अस्थिभाति प्रियता उसमें है वही अस्थिभाति प्रियता इसमें है, इसलिए अस्थिभाति प्रियता दोनों एक हैं, इसलिए दोनों एक सही है। इसका उत्तर क्या हुआ? दोनों सही है, ये गलत है, दोनों एक सही है। वाक्य में क्या फर्क आ गया बोलो? दोनों सही है ये कहने में और दोनों एक सही है ये कहने में क्या अंतर आ गया? दोनों एक सही मान, दोनों को एक मानकर सही है, और दोनों को अलग अलग मानोगे तो गलत है। तो अलग अलग क्या है? तो सर्व उपाधि वाला अलग, अल्प उपाधि वाला अलग, क्योंकि सर्व और अल्प एक ही मिल नहीं सकते हैं, दोनों नहीं मिल सकते हैं। तब रात और दिन नहीं मिल सकते, रात और दिन मिल सकते हैं, प्रकाश और अंधकार मिल सकते हैं। तो प्रकाश सही है कि अंधकार सही है बोलो? प्रकाश सही है कि अंधकार सही है? प्रकाश और अंधकार दोनों गलत है, क्योंकि दोनों अलग अलग रहेंगे, एक नहीं होने पर कारण दोनों गलत है। फिर प्रकाश सही है कि अंधकार सही है? बोले दोनों सही है। दोनों सही कैसे है? बोले जिस साक्षी से प्रकाश दिखता है उसी साक्षी से अंधकार दिखेगा। तो साक्षी, प्रकाश को देखने वाला साक्षी और अंधकार को देखने वाले साक्षी दोनों सही है कि गलत है? बोलो अब, प्रकाश को देखने वाला साक्षी और अंधकार को देखने वाला साक्षी, साक्षी दोनों सही है कि गलत है? साक्षी दोनों सही नहीं है, दोनों साक्षी मिलकर एक सही है बस, क्योंकि साक्षी एक है। साक्षी दो होंगे तो फिर वो गलत हो जाएगा। स्वप्न देखने माने अंधकार को देखने वाला साक्षी दूसरा, प्रकाश को देखने वाला साक्षी दूसरा होगा तो वह फिर अंधकार और प्रकाश की परिभाषा कर ही नहीं पाएगा। बात समझ गए कि नहीं? प्रकाश को देखने वाला साक्षी अलग, अंधकार को देखने वाला साक्षी अलग होंगे तब फिर प्रकाश और अंधकार के परिभाषा नहीं कर पाएगा वो। अंधकार क्या होता है? प्रकाश, क्योंकि दोनों का साक्षी एक है इसीलिए वो प्रकाश और अंधकार का परिभाषा कर पाता है। जिस समय पदार्थ स्पष्ट भान होता हो उसको प्रकाश कहेंगे, जिस समय पदार्थ अभान होता हो उसको अंधकार कहेंगे। ये दोनों को, पदार्थ के भानावस्था और पदार्थ के अभानावस्था को एक ही साक्षी जानता है, वही सिद्ध करता है ये अंधकार है ये प्रकाश है। ये साक्षात तत्वमसीति वेद वचसा योबोध इत्याश्रितान, अपने में आश्रित मुमुक्षु जिज्ञासु को जैसे राजा जनक के सामने अष्टावक्र खड़े हो गए और जनक की समस्या क्या थी कि वो सही है कि ये सही है, उसको अष्टावक्र ने कहा कि दोनों सही गलत हैं। दोनों गलत क्यों हैं? फिर सही क्या है यदि पूछते राजा? शायद पूछा ही होगा, क्योंकि बड़े खतरनाक जिज्ञासु थे वो, और तभी अष्टावक्र प्रकट हुआ। दोनों गलत है तो बस सही क्या है? शायद पूछा होगा, तो उसी का उत्तर देना पड़ा कि सही तुम हो। सही कौन है? सही क्या है? सही तुम हो। यानी राजा के जागृत की अवस्था का साक्षी और भिखारी के स्वप्न अवस्था का साक्षी दोनों का तुम अनुभव करता हो, इसलिए तुम दोनों जगह थे, इसलिए तुम दोनों अवस्था में तुम्हारे अस्तित्व है, इसलिए तुम सही हो, बाकी जागृत भी स्वप्न में नहीं है इसलिए गलत है, स्वप्न जागृत में नहीं है इसीलिए गलत है। कोई भी चीज एक जगह प्रतीत हो दूसरी जगह प्रतीत न हो तो उसको कहते हैं व्यभिचारी। बात समझ गए? कोई भी चीज एक अवस्था में प्रतीत हो दूसरी अवस्था में प्रतीत न हो तो उसको क्या कहते हैं? व्यभिचारी। उसी को आप व्यभिचारी कहते हैं, जो इस अवस्था में प्रतीत हो उस अवस्था में भी प्रतीत हो, उसमें भी प्रतीत इसमें भी प्रतीत, उसको आप व्यभिचारी कहते हैं। जैसे जागृत अवस्था स्वप्न में प्रतीत नहीं होता इसीलिए वह जागृत अवस्था स्वप्न में व्यभिचारी है, स्वप्न अवस्था जागृत में प्रतीत नहीं होता इसीलिए स्वप्न अवस्था जागृत में व्यभिचारी है, और जागृत और स्वप्न दोनों सुषुप्ति में प्रतीत नहीं होता इसलिए दोनों ही व्यभिचारी है, और सुषुप्ति अवस्था जागृत में प्रतीत नहीं होता है तो सुषुप्ति अवस्था भी व्यभिचारी है। तो क्या हुआ? जागृत स्वप्न सुषुप्ति तीनों के तीनों समाधि में प्रतीत नहीं होता है तो तीनों व्यभिचारी हैं। फिर सत क्या है? सत क्या है? जागृत का जो साक्षी है वही स्वप्न का साक्षी है, वही सुषुप्ति का साक्षी है, वही समाधि में तीनों की अप्रतीति का साक्षी है। समाधि में तीनों की प्रतीति नहीं होगी, जागृत स्वप्न सुषुप्ति तीनों की प्रतीत नहीं होगी, इसलिए समाधि में सब का व्यभिचार है लेकिन साक्षी का व्यभिचार नहीं है, इसलिए साक्षी सही है। उसी बात को ये कहते हैं। स्वगते नैव कालिम्ना दर्पणम मलिनम यथा, सुरेश्वराचार्य जी ने इस श्लोक की इस तरह व्याख्या की है, जैसे दर्पण यानी मिरर, कई दिन यदि उस मिरर को न पूछो और विशेष करके खड़ा न रखा हो और पड़ रखा हो मिरर और न पूछो तो सारे के सारे धूल उस मिरर में जाकर चिपक जाएंगे। उन धूलों का आश्रय क्या होगा? वे धूल कहां आश्रित रहेंगे? उसी मिरर में। जिस मिरर में वह धूल टिके हुए हैं, आश्रित हैं, वे धूल क्या करते हैं? अपने आश्रय के स्वरूप को ढक देते हैं। आप ये बताओ, मैं जो कपड़ा पहन रहा हूं ये जब कॉटन से धागा बनाया गया था, जब खेत से कॉटन पैदा हुआ था, उस समय ये कॉटन कैसा रहा होगा आप बताइए? लाल रहा होगा? है? खेत से जो कॉटन पैदा हुआ, कपास पैदा हुआ, क्या लाल रहा होगा? आप बताइए कैसा रहा होगा? सफेद। सफेद कॉटन से जब धागा बनाया गया होगा तो वो धागा कैसा रहा होगा? और उस सफेद धागे से कपड़ा बनाया गया होगा तो आप बताइए कि वो कपड़ा कैसा रहा होगा? सफेद ही रहा होगा। बाद में रंग से रंग दिया गया, लाल रंग से बाद में रंग दिया गया, और आप बताओ कि वो रंग किस में टिका है? कपड़े में, यही ना है? वो रंग किसमें टिका है? तो बोले वो सफेद कपड़ा था पहले, उसी में वो लाल रंग टिका हुआ है, आश्रित है। आप लाल रंग ऐसे आकाश में फेंक दोगे, उछाल दोगे तो आकाश लाल हो जाएगा कि नहीं? है? क्यों नहीं होगा? क्योंकि आकाश असंग होने के कारण आकाश उस लाल रंग को आश्रय नहीं दे पाया। आश्रय देता, जैसे एक कपड़ा असंग नहीं है, ससंग है, इसलिए इसके सामने जो आएगा उससे ये आसक्त हो जाएगा, रंजित हो जाएगा, लेकिन आकाश का आप लाल रंग फेंक दोगे तो रंजित होगा, क्योंकि असंग है, इसलिए आकाश लाल नहीं होगा, पीला नहीं होगा, हरा नहीं होगा, नीला नहीं होगा, काला नहीं होगा, लेकिन कपड़े असंग नहीं है, इसलिए वह जैसे रंग इसमें पड़ते हैं वैसे उस रंग का आश्रय वही कपड़ा है। वो क्या कर रहा है, कपड़े के स्वरूप को, सफेदी को ढक कर अपने स्वरूप प्रकट करता है, कपड़े के स्वरूप को तिरोहित कर देता है। जैसे ये दृष्टांत, जैसे यहां सुरेश्वराचार्य ने दर्पण का मिरर का दिया, मिरर में कई दिन तक आपने नहीं पूछा तो धूल जम गया, और वो धूल मिरर के आश्रय में है, और उसी के आश्रय में रहने वाला धूल उसी के स्वरूप को, स्वच्छता को ढककर बैठा हुआ है। स्वगते नैव कालिम्ना दर्पणम मलिनम यथा, अपने में ही रहने वाले धूलों से स्वच्छ होता हुआ भी दर्पण क्या हुआ, मलिन हो गया। इसी तरह ये जो आत्मा है, सर्वव्यापक, शुद्ध, अखंड, अद्वितीय, अभिकारी, इसी को आश्रय बनाकर अविद्या माया बैठी हुई है, और वह अविद्या और माया क्या करती है, उसी के स्वरूप को ढक देता है। तब फिर जीवात्मा ये मान लेता है मोह के प्रति, अज्ञानेन मृतम ज्ञानम तेन मुह्यन्ति जंतवा, गीता का उस एक श्लोक के आधे पद को यहां सुरेश्वराचार्य जी ने लिया, अज्ञानेन मृतम ज्ञानम तेन मुह्यन्ति जंतवा, ज्ञानम आत्मानम अज्ञानेन आवृतम, अज्ञान के द्वारा आवृत हुआ हुआ होने के कारण ज्ञान स्वरूप आत्मा भी उन अज्ञान के चलते मोहित हो गया है। ये आत्मा का मोह किसके चलते है, तो अज्ञान के चलते। मोह का अर्थ क्या है, मोह का अर्थ है अन्यथा संतम आत्मानम अन्यथा प्रतिपद्यते, ये मोह का लक्षण है। अपने आप भिन्न होता हुआ भिन्न मान लेना, इसी का नाम मोह है। अपने आप स्त्री न होता हुआ भी अपने आप को स्त्री मान लेना, ये स्त्री का मोह है। अपने आप पुरुष न होता हुआ भी अपने आप को पुरुष मान लेना, ये पुरुष का मोह है। अपने आप मनुष्य न होता हुआ भी अपने आप को मनुष्य मान लेना, ये मनुष्य का मोह है। तुमने स्त्री किसके चलते माना, तुम्हारे आश्रय में जो शरीर टिका है वह शरीर क्या कर रहा है, तुम्हारे स्वरूप को ढककर स्त्री बनाकर दिखा रहा है, और तुम मान रहे हो मैं स्त्री हूं। किसके चलते तुम स्त्री हो गए, शरीर के चलते। किसके चलते तुम पुरुष हो गए, तुम्हारे आश्रय में रहने वाला शरीर, वह शरीर के तुम्हारे स्वरूप को ढककर इस शरीर को अपना स्वरूप मानने लग गए तुम, इसलिए तुम कहते हो मैं पुरुष हूं। ये पुरुष का मोह है। पुरुष तो स्थूल शरीर का धर्म है, स्थूल शरीर का चिन्ह है, तुम्हारा नहीं है। और मनुष्य शरीर, मनुष्य तुम्हारे आत्मा में मनुष्य स्वरूप आश्रित है, और जिस आत्मा में इन मनुष्य शरीर आश्रित हैं, उन आत्मा के स्वरूप को ढककर शरीर अपने रूप में तुम्हें प्रतीत करा रहा है, तो तुम कहते हो कि मैं मोह मनुष्य हूं। ये मनुष्य का मोह है। तुम्हारे असली स्वरूप को जानना हो तो क्या करना पड़ेगा, तुम्हें स्त्री के शरीर से अलग अपने को देखना पड़ेगा, निश्चय करना पड़ेगा। कई समय तुम शरीर को अलग रखकर चिंतन करो, ये शरीर कहां टिका हुआ है, शरीर को कौन प्रकाशित कर रहा है, शरीर को कौन जान रहा है। प्रकाश और प्रकाशित होने वाले पदार्थ भिन्न हैं। जाने वाला और जाना जाने वाला पदार्थ ज्ञेय पदार्थ से भिन्न है। तुम इस शरीर को जानते हो, इसका मतलब है कि तुम जानने वाले शरीर, जाना जाने वाला पदार्थ जानने वाले व्यक्ति से भिन्न होता है। तुमको सिद्ध हो जाएगा कि तुम शरीर से भिन्न हो, तब फिर तुम ये गलती नहीं कर पाओगे कि मैं स्त्री हूं। ये क्या होगा, जब गुरु इस तरह वाक्य का शोधन करके साक्षात यत साक्षात करणाद भवेन्न पुनरावृत्तिर भवाम्भो निदौ। जब महावाक्य का शोधन करके गुरु तत्त्वमसी के द्वारा उपदेश करते हैं तब वह जग जाता है, अपने कूटस्थ स्वरूप को जानता है। जिस पारमार्थिक यथार्थ स्वरूप को जानने के बाद यत साक्षात करणात भवे न पुनरावृत्ति, अपने कुटस्थ पारमार्थिक स्वरूप को साक्षात कर लेने के बाद फिर उस आत्मा को दोबारे संसार की प्राप्ति नहीं होती, पुनरावृत्ति नहीं होती। न स पुनरावर्तते, न स पुनरावर्तते, वह दोबारे फिर इसको अध्यास को प्राप्त नहीं होगा। एक बार भ्रांति हट जाने के बाद दोबारे भ्रांति नहीं होगी, यही तुम्हारा मोक्ष होगा। फिर दोबारे शरीर को मैं हूं ये नहीं कहोगे तो यही तुम्हारा मोक्ष है। फिर आज तुमको कह दिया कि मैं शरीर नहीं हूं, आज तो कह दिया मैं शरीर नहीं हूं, कल फिर मैं शरीर हूं, मैं काला हूं, मैं गोरा हूं कहने लग गए तो तुम फिर फंस गए। एक साथ साथ करणात पुनरावृत्तिर भवाम्भो निरव, ये संसारूपी सागर में एक बार डूबे हुए थे, कब डूबे थे पता नहीं। गुरु तुमको जब इस डुबान से निकाल देता है, निकलने के बाद फिर दोबारे तुम डूब नहीं सकते हो, यही मोक्ष है। ऐसे करुणा वरुणालय ज्ञान मूर्ति भगवान दक्षिणामूर्ति शिवलाई शिव को मैं और क्या दे सकता हूं। मुझे डूबते हुए को निकालकर असंग बनाकर रखने वाले गुरु को तस्मै श्री गुरु मूर्तये नमः इदं श्री दक्षिणा मूर्तये। और आगे क्या कहेंगे कल देखेंगे। ओम पूर्णमदा पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांतिः।